नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ राकेश थपलियाल। नमस्कार राकेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
नमस्कार, धन्यवाद।
आगे बढ़ो उससे पहले अब तक के मुख्य समाचार जान लेते हैं। जिम्बाब्वे के साथ T20 श्रृंखला के पहले दो मैचों के लिए भारतीय टीम में बदलाव, साई सुदर्शन, जितेश शर्मा और हर्षित राणा टीम में शामिल। विंबलडन ओपन टेनिस में सुमित नागल पहले दौर में हार कर बाहर, कल पुरुष डबल्स में कई भारतीय खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश करेंगे। डूरंड फुटबॉल कप 27 जुलाई से 31 अगस्त तक चार स्थानों पर आयोजित होगा। पुर्तगाल और फ्रांस यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और भारत 23 वर्ष से कम उम्र के पहलवानों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पहले स्थान पर रहा। जिम्बाब्वे के साथ पांच मैचों की T20 श्रृंखला के पहले दो मैचों के लिए भारतीय टीम में बदलाव किया गया है। साई सुदर्शन, जितेश शर्मा और हर्षित राणा को संजू सैमसन, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल के विकल्प के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम की घोषणा पहले ही कर दी गई थी, लेकिन विश्व कप के लिए गई भारतीय टीम के बारबाडोस में फंसे होने और अभी तक वापस नहीं आ पाने के कारण टीम में अचानक बदलाव किए गए। बताया जा रहा है कि ये तीनों खिलाड़ी पूरी टीम के साथ पहले भारत आएंगे और इसके बाद जिम्बाब्वे के लिए रवाना हो जाएंगी। T20 सीरीज का पहला मुकाबला 6 जुलाई को हरारे में खेला जाएगा। अगर हम बात करें तो जिम्बाब्वे का जो दौरा है गिल के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला बड़ा नेतृत्व है और इससे पहले वह आईपीएल में गुजरात टाइटन्स के लिए शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं।
देखिए, एक बड़ी बात होती है कि भारतीय टीम की कप्तानी जब किसी खिलाड़ी को मिलती है तो उसके खेल में भी निखार आता है और उसकी जो नेतृत्व क्षमता है उसकी एक तरह से परीक्षा भी होती है और एक आपके साथ एक खिताब जुड़ता है कि भाई आप हिंदुस्तान के कप्तान हैं। तो शुभमन गिल को एक बहुत बड़ा ये मौका मिला है और जिम्बाब्वे की भी एक युवा टीम है, 27 साल के औसत उनकी उम्र है, कप्तान जरूर सिकंदर रजा उनके 38 साल के हैं। तो ये जो हमारे युवा खिलाड़ी वहां जा रहे हैं इनको एक अच्छा मौका रहेगा अपनी प्रतिभा को दिखाने का और भारतीय टीम के लिए अपना दावा पेश करने का। लेकिन ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन इनको तो T20 वर्ल्ड कप में खेलने का मौका नहीं मिल पाया और उसके बाद ये जिम्बाब्वे के टूर के पहले दो मैचों में भी नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि इस तरह की विषम परिस्थितियां हो गई हैं। शिवम दुबे भी इसमें जाना था उन्हें, वो भी नहीं जाएंगे। हालांकि शिवम दुबे ओरिजिनली इस टीम में सिलेक्ट नहीं थे, वो नीतीश रेड्डी थे जो वो इंजर्ड हुए तो उसकी जगह फिर शिवम दुबे को टीम में रखा गया। तो शिवम दुबे के लिए भी कोई बहुत जबरदस्त वर्ल्ड कप नहीं गया, जैसा धमाकेदार प्रदर्शन उनसे उम्मीद थी तो उनके पास भी यहाँ मौका रहेगा। तो पहले दो मैचेस में ये लोग नहीं खेल पाएंगे लेकिन उसके बाद जाते हैं, ये आगे क्या होता है ये कुछ पता नहीं होता। लेकिन इनकी वजह से जो इन खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है पहले दो मैचों में, साई सुदर्शन है, जितेश और हर्षित राणा, इनके लिए एक बड़ा मौका रहेगा कि आपको सडनली एकदम से टीम में जब चुना जाता है तो मुझे लगता है आजकल जो क्या होता है कि खिलाड़ी जो फ्रिंच प्लेयर्स होते हैं जो बाहर होते हैं वो भी तैयारी पूरी रखते हैं अपनी कि किसी दिन भी कॉल आ सकते हैं, पूरे अपने पासपोर्ट वगैरह सब संभाल के रखते हैं, किट भी अपना पूरा तैयार रखते हैं। तो इन खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा मौका रहेगा।
जी हाँ, इनको सुनहरा अवसर मिला और अपना प्रदर्शन दिखाने का मौका मिलेगा। और देखा जाए तो जो आईपीएल में अपने अपने फ्रेंचाइजी के लिए शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं, अभिषेक है, रियान है और तुषार को पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया है तो उनके लिए भी सुनहरा अवसर है।
बिल्कुल, देखिए अभिषेक शर्मा ने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी आईपीएल में की, हालांकि फाइनल में मिचेल स्टार्क ने जो उनको आउट करके जिस तरीके का एक बहुत बड़ा आघात सा पहुंचाया था, जो जबरदस्त अंदाज की बॉलिंग से उनका विकेट लिया था वो बहुत बड़ा उनके लिए झटका था, लेकिन बहुत ही उभरते टैलेंटेड बल्लेबाज हैं और उनको यहाँ मौका मिला है तो यहाँ पर उनको अपनी प्रतिभा जो है दिखानी होगी। सभी के लिए एक अच्छा मौका है, ये जिम्बाब्वे के ऐसे टूर होते हैं कि इस पे आपको मौका मिलता है। हाँ, इस पे आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो बहुत बड़ा आपको उसका क्रेडिट भी नहीं मिलता क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम को बहुत बड़ा एक बड़ी टीम के रूप में नहीं देखा जाता, लेकिन फिर भी विदेशी धरती पे जाके खेलना, वो अनुभव आपको हासिल होना, वो एक अलग तरीके का माहौल, एक इंडिया टीम के लिए रिप्रेजेंट करना भारतीय टीम को, तो वो बड़ा अवसर इन खिलाड़ियों के लिए हो जाता है।
जी हाँ, बहुत सारे युवा खिलाड़ी हैं, ऑलमोस्ट चाहे वो ध्रुव की बात की जाए, उन्होंने टेस्ट खेला है पर T20 में पहली बार खेला।
बिल्कुल, ध्रुव जुरेल के लिए एक अच्छा मौका इनके लिए आ जाता है कि भाई आपको अगर तीनों फॉर्मेट के लिए अपने को बनाना है और वो तो क्योंकि देखिए विकेट कीपर भी हैं तो उनके लिए बड़ा एक मौका है। टेस्ट में तो वो अपनी प्रतिभा को साबित कर चुके हैं, अब उनके लिए मौका रहेगा भाई टी ट्वेंटी में भी आप अपनी प्रतिभा को दिखाइए।
इस बीच आपको बता दें कि बारबाडोस में तूफान बेरल के कारण फंसी भारतीय टीम के कल दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है, और पिछले दो दिन से चक्रवात बेरल के कारण बारबाडोस में फंसी हुई है भारतीय टीम, और दिल्ली पहुंचने पर खिलाड़ी जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। मतलब जितना वर्ल्ड कप ट्रॉफी का इंतजार था उतना बेसब्री से इंतजार भारतीय खिलाड़ियों का हो रहा है, लेकिन कह सकते हैं कि ये जो तूफान है उसने एक बैरियर सा बना दिया उनके लिए।
बिल्कुल, देखिए आप प्रियंका के प्रधानमंत्री से जब आप वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद मिलते हैं तो एक वो बड़ा ही सुखद और एक ऐसा अविस्मरणीय क्षण होता है कि आपको ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, तो सभी खिलाड़ी इसका भी बेताबी से इंतजार कर रहे होंगे। और हमारे जो खेल प्रेमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो क्रिकेट के मैं आपको बताऊं कि शायद वो देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो कि प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। और हम अहमदाबाद में मैच कवर करने जाते थे तो हम देखते थे कि वो मैचेस में आते थे, पूरे मैच भी देखते थे, खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में जाके उनका उत्साह भी बढ़ाया करते थे। तो काफी वो मतलब खेल प्रेमी हैं। अब ओलंपिक का भी दौर शुरू हो रहा है ना इस महीने से, तो मुझे लगता है कि सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा एक सुनहरा अवसर रहेगा जब प्रधानमंत्री जी ने देखिए जीतते ही खिलाड़ियों के साथ बात की, उनके लिए एक संदेश भी भेजा, सब कुछ ट्वीट किए। तो इतनी त्वरित जो चीजें हैं जो प्रधानमंत्री करते हैं कि एक एक खिलाड़ी के प्रदर्शन पर भी नजर रखते हैं,
राजनीतिक सरगर्मियां होने के बावजूद भी वो पूरा इंटरेस्ट रखते हैं और देखते हैं कि उनके मनोबल से जैसे हमारे खेल जगत को बहुत ज्यादा आगे प्रोत्साहन मिला है और आगे भी मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं, विंबलडन की बात करते हैं। विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में सुमित नागल पहले दौर में हारकर बाहर हो गई, उन्हें सर्बिया के मियोमिर केकमानोविच ने शिकस्त दी। अन्य मैचों में कार्लोस अल्कराज और डेनियल मेदवेदेव ने अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। महिला सिंगल्स में नाओमी ओसाका और एलेना आंद्रीवाना रैबाकिना अगले दौर में पहुंच गई हैं। सुमित नागल से उम्मीद थी, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन में वो अगले दौर में पहुंचे थे, 35 साल बाद हमारा भारतीय खिलाड़ी जो था सिंगल्स में अगले दौर में पहुंचा था, पर इस बार फिर नाकामी हासिल हुई।
देखिए सुमित नागल ने अभी ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया है अपने रैंकिंग प्वाइंट के हिसाब से, 72वीं उनकी रैंकिंग है इस समय। और 2019 में प्रजनेश गुणवेश्वरन जो है वो पहुंचे थे जब उन्होंने सिंगल्स, वो भी पहले राउंड में हार गए थे। तो ये बड़ा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे खिलाड़ी जो है सिंगल्स में उतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाते, और ये जिस खिलाड़ी से हारे हैं 5 साल पहले जर्मनी में भी एटीपी टूर्नामेंट में उसी खिलाड़ी से हारे थे, तो उसके बाद इनकी जो ये मुलाकात हुई है, मुझे लगता है कि ओलंपिक से पहले अगर ये आध राउंड यहां पर जीतते तो इनका हौसला काफी बढ़ता। हालांकि एक सेट उन्होंने जीता है अपने से कहीं अधिक वरीयता वाले खिलाड़ी के खिलाफ, तो वो भी उनका हौसला बढ़ाने वाला होगा। लेकिन ये सरफेस ऐसा है ग्रास का जो मुझे लगता है कि वो शायद उनका फेवरेट सरफेस नहीं है, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग हार्ड कोर्ट के ऊपर खेलना पसंद करते हैं, उसी के ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस लोगों की रहती है। लेकिन फिर भी अगर वो यहां ये राउंड कम से कम जीतते तो शायद ओलंपिक्स के लिए उनका एक अच्छा अनुभव रहता।
जी हाँ, और हालांकि डबल्स में भी अपनी कोशिश आजमाएंगे सुमित नागल। कल पुरुष डबल्स के पहले दौर में कई भारतीय खिलाड़ी हैं, उनमें सुमित नागल भी हैं, और भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रिया के मैथ्यू एबिडन की जोड़ी का सामना भी फ्रांस की जोड़ी से होगा। इसके अलावा एन श्रीराम बालाजी हैं, वो भी अपने ब्रिटेन के ल्यूक जॉनसन जोड़ीदार के साथ खेलेंगे। और इसके अलावा जो यूके भांबरी और फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी की जोड़ी का सामना भी कजाकिस्तान की जोड़ी से होगा। तो अब सारा दारोमदार डबल्स पे, और खासकर रोहन बोपन्ना इतने उम्र दराज होने के बाद भी आज भी उन पर भरोसा टिका हुआ है।
देखिए बड़ी बात है, रोहन बोपन्ना बहुत जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं डबल्स में भी, और डबल्स में देखिए महेश भूपति, लिएंडर पेस, उन्होंने आपस में मिलकर या दूसरे अपने साथियों के साथ किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में अपना नाम किया। लेकिन मैं अक्सर ये बोलता हूं कि हमारे पुराने महान खिलाड़ी रामानाथन कृष्णन साहब ये कहा करते थे कुछ वर्ष पहले तक कि भाई हमारे खिलाड़ी सिंगल्स को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, डबल्स की तरफ जाते हैं। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं कि हमारे खिलाड़ी एकदम से इस चीज को अच्छा भांप जाते हैं कि भाई वो डबल्स में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, तो डबल्स में विश्व स्तर को छुआ, वर्ल्ड में नंबर एक रहे, ये भी एक बड़ी बात रही। हाँ, लेकिन सिंगल्स में हम नहीं जीत पाते, ये भी है, इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, और जो नई पीढ़ी है वो इसकी तरफ मेहनत करे खूब, क्योंकि बिना मेहनत से ही सब कुछ होना है। सरकार की तरफ से सुविधाएं भी अब बहुत ज्यादा मिल रही हैं, सब कुछ है, तो खिलाड़ी की अपनी मेहनत है, और फिटनेस का लेवल जो इन खिलाड़ियों का देखना है मुझे लगता है वैसे ही फिटनेस का लेवल हमारे खिलाड़ियों को लाना पड़ेगा, तभी जाके हम सिंगल्स में अच्छा कर सकते हैं।
और इस बीच दो बार के चैंपियन एंडी मरे ने विंबलडन के सिंगल्स से हटने का फैसला किया है, लेकिन अपने भाई जेमी रॉबर्ट मरे के साथ वे डबल्स खेलने की योजना बना रहे हैं। मतलब दो बार वे भी विंबलडन जीत चुके हैं, और लेकिन जो उनकी सर्जरी हुई है अभी पिछले दिनों सिस्ट के कारण, तो उन्होंने नाम वापस ले लिया है सिंगल्स।
अब लोग यही सोच सकते हैं कि भाई वो जो आपकी सर्जरी की प्रॉब्लम है वो उसमें फिटनेस जो है वो सिंगल्स में नहीं रहेगी लेकिन डबल्स में रहेगी, तो ये कैसे मतलब एक ऐसी चीज है। लेकिन डबल्स में है कि थोड़ा सा हार्डवर्क मुझे लगता है कि कम करना पड़ेगा, लोड कम रहेगा उनके ऊपर, इसलिए उन्होंने फैसला किया।
और अब बात करते हैं यूरो फुटबॉल कप की। पुर्तगाल और फ्रांस यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज स्लोवेनिया को पेनल्टी शूटआउट में 3-0 से हराया। दोनों टीम निर्धारित समय में बराबरी पर थी, इसलिए मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ। कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ ब्रूनो फर्नांडिस और बर्नार्डो सिल्वा ने गोल किए, जबकि गोलकीपर डियागो कोस्टा ने स्लोवेनिया के तीनों प्रयास नाकाम कर दिए। जो रोनाल्डो का इस अभी तक टूर्नामेंट में पहला गोल है ये।
बिल्कुल, वो भी जो है पेनल्टी शूटआउट में आया और एक एक्स्ट्रा टाइम में उन्होंने पेनल्टी जो है मिस भी की है, तो ये एक बड़ी थी। उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़ के एक जेस्चर भी किया लोगों से कि जैसे माफी मांग रहे हो। लेकिन वो उन्होंने देखिए क्या होता है कि रोनाल्डो ने बड़ा अच्छा बोला। एक तो उन्होंने कह दिया कि ये उनका आखिरी यूरो कप होगा, है ना, तो 2004 से वो खेल रहे हैं और काफी गोल उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर किए हैं, 14 गोल किए हैं। इस बार नहीं कर पा रहे हैं वो एक अलग चीज है, और पूरी दुनिया में 130 इंटरनेशनल गोल उनके नाम है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन अब लोग उनसे चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गोल करें, उनके पैरों से गोल निकलता हुआ या सिर से गोल देखना लोग चाहते हैं। पर यहां जो उनका पेनल्टी किक मिस करना और उसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पहली किक लगाने के लिए आगे आना, तो वो है कि भाई कॉन्फिडेंस उनके अंदर है और अपनी टीम के लिए मतलब कुछ भी करने को तैयार है, भले ही आपके नाकामी हाथ लगे। क्योंकि खेलों में उन्होंने बड़ा अच्छा बोला कि फेलियर और सक्सेस दोनों चीजें साथ चलती हैं, कभी आप सक्सेसफुल होते हैं कभी आप फेल होते हैं, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है।
बिल्कुल, जैसे मैं कहूंगी T20 में विराट का बल्ला पूरे टूर्नामेंट में नहीं चला और आखिरी मैच में मैच विनिंग स्कोर उन्होंने बनाया।
बिल्कुल, तो वो देखिए जो उनकी आलोचना कर रहे थे उनको ये जवाब मिल गया और रोहित शर्मा ने जो लगातार उन पर भरोसा जताया, तो वो भी एक कप्तान का सपोर्ट भी बहुत बड़ी चीज है।
और यूरो कप में आगे बढ़ते हैं, अन्य प्री क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने बेल्जियम को 1-0 से पराजित किया। बेल्जियम के यान वटनगेन ने 85वें मिनट में अपने ही गोल पोस्ट में गोल किया, जिसने फ्रांस को बढ़त दिला दी और वे क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मतलब दोनों ही बेहतरीन टीम फ्रांस और बेल्जियम, लेकिन किस्मत शायद फ्रांस के साथ में थी और अपने ही गोल पोस्ट में गोल कर गए।
बिल्कुल, देखिए बहुत कड़ा मुकाबला एक चल रहा था और अपने खिलाड़ी से डिफ्लेक्ट होकर गोल हो गए। इस यूरो कप में हम देख रहे हैं कि जो ऑन गोल है ये बहुत हो रहे हैं
जी,
शुरुआत से ही हम देख रहे हैं।
फ्रांस दूसरी बार शायद गोल की है,
तो अब ये देखिए आधुनिक फुटबॉल है, इसमें कई बार बचाने के चक्कर में गोल भी हो जाते हैं।
और आज रोमानिया का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। देर रात ऑस्ट्रिया और तुर्की आमने सामने होंगे। इन दोनों मैचों में से जीतने वाली दो टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी। इससे पहले स्पेन, जर्मनी, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुकी हैं। भारतीय फुटबॉल के घरेलू सत्र का पहला टूर्नामेंट डोरन कप 27 जुलाई से 31 अगस्त तक 4 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। एशिया के सबसे पुराने टूर्नामेंट के 133वें सत्र में राउंड रॉबिन लीग और नॉकआउट प्रारूप में 43 मैच खेले जाएंगे, जिसमें शुरुआती और फाइनल मुकाबला कोलकाता में होगा। टूर्नामेंट को देश के पूर्व और उत्तर पूर्व में और अधिक फैलाने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए इस साल भी दो नए शहरों जमशेदपुर और शिलांग को मेजबान के रूप में जोड़ा गया है। कोलकाता तीन ग्रुपों की मेजबानी करेगा, जबकि कोकराझार जो असम में है, शिलांग और जमशेदपुर एक एक ग्रुप की मेजबानी करेंगे। और अगली बात अंडर 23 कुश्ती की। भारत 23 वर्ष से कम उम्र के पहलवानों की एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में पहले स्थान पर रहा। जॉर्डन के अम्मान में भारत के युवा पहलवानों ने फ्री स्टाइल कुश्ती में 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 8 पदक जीते। मतलब अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन है ये हमारे युवा जो पहलवानों की।
बिल्कुल, ये देखिए ये हमारी अगली पीढ़ी है और यही तमाम पहलवान जो है हमें सीनियर लेवल पे खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अंडर 23 की चैंपियनशिप है। इससे लग रहा है कि हमारी जो तैयारी और नई पौध का जो रेसलिंग में जो कुछ भी चला उसका असर कुछ नई पौध पे नहीं दिखाई दे रहा और बड़ी मेहनत कर
और फोकस्ड हैं। श्रोताओं, समय कह रहा है आपसे अनुमति ली जाए। राकेश जी, आप स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
शुक्रिया।
श्रोताओं, प्रियंका अरोड़ा और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।